एहेस्केल अध्याय 21। परमेश्वर के भविष्यत वक्ता बड़े ही सजीव चरित्र के होते थे, क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वे विचित्र हरकतें करते थे, जिससे कि लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न हो और वे पूछें, ये कर क्या रहा है। तब वे परमेश्वर का संदेश सुनते थे। इस प्रकार उनकी सेवा बड़ी सजीव होती थी और वे इस प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें प्रश्न पूछने पर बाध्य कर देते थे। तब प्रश्नों के उत्तर में वे उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाते थे। एहेस्केल अध्याय 21 में एहेस्केल इसी प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। एहेस्केल अध्याय 21 पद 1 और 2। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इससे हम देख पाते हैं कि भविष्यवाणियों की पृष्ठभूमि क्या है। भविष्यवाणियां दक्षिण राज्य अर्थात यरूशलेम के लिए है। एहेस्केल अध्याय 21 पद 2 से लेकर 6 तक। इसराइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी और दोनों को नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार मियान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है और वो उसमें फिर रखी न जाएगी। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर, टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। ये कहकर यहोवा ने अपनी तलवार यरूशलेम की ओर बढ़ाई और एहेस्केल से कहा, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। एहेस्केल अध्याय 21 पद 7। और जब वे तुझसे पूछे कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वो अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। अब उसे ये नाटक करना है कि मानो उसकी कमर टूट गई। तब लोग उसे पूछेंगे, एहेस्केल क्या हो गया? तब वो उन्हें कहेगा, मेरी आहें भरने के कारण है कि दक्षिण से बाढ़ आ रही है और उसके आते ही तुम भी आहें भरोगे और विलाप करोगे, क्योंकि तुम्हें समाचार प्राप्त होगा कि यरूशलेम का नाश हो गया है, नगरों में कत्ले आम हो गया है, उनमें से अनेकों के परिवार अब भी यरूशलेम में थे, उन्हें शीघ्र ही संदेश मिलेगा कि वे नाश हो गए। एहेस्केल अध्याय 21 पद 8 से लेकर 10 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वो इसलिए सान चढ़ाई गई कि उसे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके, तो क्या हम हर्षित हों? ये आनंद और हर्ष का समय है। एहेस्केल अध्याय 21 पद 10 से लेकर 12 तक। वो तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है, और वो झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए। वो इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वो मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वो इसराइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए, इस कारण तू अपनी छाती पीट। आहे भरते भरते वो अब बिलक बिलक कर कहने लगता है। जब लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है, तब वो उन्हें परमेश्वर की तलवार के विषय में बताता है कि वो यरूशलेम पर खींच दी गई है और परमेश्वर उन्हें दंड देने चला आता है। ये तलवार वो बाबुल के हाथ में देगा। एहेस्केल अध्याय 21 पद 14। सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार। वो लोगों को आकर्षित करने के लिए ताली बजा रहा है। एहेस्केल अध्याय 21 पद 14 से लेकर 20 तक। और तीन बार तलवार का बल दुगना किया जाए। वो तो घात करने की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाएं। हाय हाय, वो तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दैनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो, मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जल जलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सर पर एक चिन्ह कर, एक मार्ग ठहरा कि तलवार अमोनियों के रबा नगर पर। रबा नगर अमोनियों की राजधानी थी। एहेस्केल अध्याय 21 पद 20 और 21। और यहूदा देश के गढ़ वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिरमुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी भूजने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और ग्रह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। अपने देवताओं से भविष्य पूछने की ये उनकी विधि थी। जब नबूकदनेस्सर तिराहे पर आया, तब उसके सामने दो मार्ग थे। एक अमोनियों की राजधानी रबा की ओर जाता था तथा दूसरा यरूशलेम की ओर जाता था। उसके साथ उसकी सेना थी और सामने दो रास्ते। इसलिए उसने अपने देवताओं से पूछा कि उन्हें किस ओर जाना है। उन्होंने दो तीर लिए, एक पर रब्बा लिखा और एक पर यरूशलेम, और उन्हें एक बोरे में डालकर हिलाया। तब उस बोरे में हाथ डालकर तीर निकाला कि जिस नगर का नाम उस तीर पर होगा उसी को वे नाश करेंगे। यही उनके देवता का भावी दर्शन होगा। तब उन्होंने एक मेमने को घात करके उसका कलेजा बाहर रखा और उस पर लकीरों के निशान देखे कि वे किस ओर संकेत करते थे। एहेस्केल उन लोगों को यही कह रहा था कि नबूकदनेस्सर तिराहे खड़ा है और अपने देवता से पूछ रहा है कि वो किस नगर की ओर जाए। एहेस्केल अध्याय 21 पद 22 से लेकर 27 तक। उसके दैने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वो उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की और युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए, परंतु लोग तो उस बावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उनकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। और हे इसराइल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वो ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वो उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। एहेस्केल की ये भविष्यवाणी बड़ी ही रोचक है, जो हमारे समय से होती हुई भविष्य में चली जाती है। यहां यहोवा कहता है, इसराइल के दुष्ट प्रधान, इसका सीधा संबंध तो सिदकिया से था, वो इसराइल का अंतिम राजा था। इसका दूसरा अर्थ है क्रिस्त विरोधी, जो अंतिम दिनों में आएगा। अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। ये अधर्म उन दिनों का है जब क्रिस्त विरोधी राज करेगा, जिसे यहूदी स्वीकार करेंगे और अपना मसीहा मानेंगे। याद कीजिए यीशु ने क्या कहा था, यूहन्ना अध्याय 5 पद 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। दानियल की पुस्तक के अनुसार ये आने वाला प्रधान क्रिस्त विरोधी इसराइल के साथ वाचा बांधेगा और 7 वर्षों के मध्य इसे तोड़ेगा, क्योंकि वो उजाट करने वाली घृणित वस्तु की मंदिर में स्थापना करेगा। वो असीम बल के साथ उभरेगा और यूरोपीय संघ को अपने अधीन कर लेगा और इसराइल राष्ट्र के साथ वाचा बांधेगा। इसराइल उसे अपना मसीह मानेगा। आज इसराइल में मसीह के विषय बहुत चर्चा हो रही है। वे उसके अतिशीघ्र आने की प्रतीक्षा में हैं। सत्य तो यह है कि कुछ एक माननीय रबी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मसीहा अतिशीघ्र आने वाला है, इसलिए वे अत्यधिक उत्साही हैं। परंतु वो एक बात कहते हैं कि वे परमेश्वर के पुत्र की बाट नहीं जोते हैं। उनका कहना है कि वो मूसा के समान एक आम मनुष्य ही होगा। मूसा ने भी यही कहा था, उसके जैसे एक और भविष्यद्वक्ता आएगा जिसकी तुम सुनना। वो वचन मसीह के बारे में था। यही कारण है कि वे कहते हैं मसीह मूसा के जैसा मनुष्य होगा। परंतु उनसे पूछो कि वे जानेंगे कैसे कि वो मसीह है। उनका एक ही उत्तर है, वो मंदिर के निर्माण में हमारी सहायता करेगा। निस्संदेह दानियल कहता है कि वे उनके साथ वाचा बांधेगा। ये वाचा मंदिर के निर्माण की ही होगी। उनका मंदिर वो निश्चय ही बनाएगा। आगे चलकर हम एहेस्केल की बड़ी ही रोचक भविष्यवाणी को देखेंगे। जो जो हम उस भविष्यवाणी के अंत की ओर अग्रसर होते हैं, त्यों त्यों एहेस्केल अधिकाधिक उत्साहित होता जाता है। वो इसराइल के इतिहास से आरंभ करके समय अनुसार आज की, कल की, पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं का उल्लेख करता है। वो मंदिर के पुनर्निर्माण की भी भविष्यवाणी करता है, जो अति शीघ्र होने वाला है। वो मंदिर की लंबाई चौड़ाई भी बताता है। तब वो मंदिर के विषय एक बड़ी विचित्र बात कहता है जो मेरी समझ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हम आगे देखेंगे। यहां वो उस दुष्ट की भविष्यवाणी कर रहा है जो अधर्म के अंत दिनों में आएगा। यहां राजदंड से याजकों की टोपी वरन वो राज मुकुट को भी उतार देगा। शैतान उसे अपना अधिकार और सामर्थ प्रदान करेगा। वो इसराइल में एक अंतिम अगुआ बनकर आएगा और उनके मंदिर का निर्माण कराएगा, जिसके कारण प्रजा उत्साहित होकर उसे मसीह कहेगी। उसके पास हर प्रश्न का उत्तर और हरेक समस्या का समाधान होगा। उसके पास मंदिर निर्माण का ऐसा समाधान होगा कि मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होगा। संपूर्ण संसार उसकी प्रतिभा पर अचंभा करेगा। वो इसराइल के मंदिर निर्माण की समस्या का समाधान बड़ी आसानी से निकाल लेगा और सब उसे प्रसन्न हो जाएंगे। उसकी पगड़ी उतार दो, क्योंकि वो झूठा मसीह है। वो सच्चा मसीह नहीं है। वो आने वाला याजक नहीं है। वो सच्चा राजा नहीं है। एहेस्केल अध्याय 21 पद 26 और 27। और मुकुट भी उतार दे, वो जो का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। परमेश्वर ने कहा, मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हां, उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी मसीह यीशु न आए, तब वो उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। जब यीशु फिर आएगा, तब वो अपने आगमन के तेज से, अपने मुख से निकलती तेज तलवार से पाप के पुतले का नाश कर देगा। वो दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहलाएगा। वो परमेश्वर के राज्य की महिमा का युग लेकर आएगा। अतः वे आरंभ में इस झूठी आशा को पकड़े रहेंगे। धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, दूसरा तेसलोनिकियों अध्याय 2 पद 10 और 11, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटक देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। उसका आगमन ऐसी शक्ति और चमत्कारों के साथ होगा कि चुने हुओं को छोड़कर पूरा संसार उसे धोखा खा जाएगा, और वे चुने हुओं को भी भ्रमित करने का प्रयास करेगा। यहां चुने हुए जन कलीसिया नहीं है, वे यहूदी हैं, 144,000, जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर उन पर मोहर लगा दी कि वे महाक्लेश से बचे। परमेश्वर उसका तख्ता पलट देगा। जो उठाया गया है वो नीचे गिराया जाएगा, और जो गिराया गया था वो आकर सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जिस पर 7 मोहरें लगी हैं। उस पुस्तक में भीतर और बाहर दोनों ओर लिखा हुआ है। तब एक स्वर्गदूत पुकार कर कहता है, पुस्तक को लेने और खोलने के योग्य कौन है? ये पुस्तक पृथ्वी के मालिकाना दस्तावेज है। इसलिए वो पुकार रहा है कि कौन इस योग्य है कि पृथ्वी को मुक्त कराकर परमेश्वर को पुनः दे दे। आदि में पृथ्वी परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने उसे मनुष्य को दे दिया था, और मनुष्य ने उसे शैतान के अधीन कर दिया। यीशु पृथ्वी को लड़ झगड़ कर नहीं, परंतु अपने लहू द्वारा कीमत चुकाकर परमेश्वर के लिए मुक्त कराने आया था। वो धर्मी जन अधर्मियों के लिए था, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के कारण मृत्यु जो सब मनुष्यों में व्याप्त हो गई, क्योंकि सब ने पाप किया, तथापि एक मनुष्य की धार्मिकता के कारण अनेक धर्मी ठहराए जाएंगे। अतः स्वर्ग में वो समय आ गया है कि सौदा किया जाए, अर्थात मुक्ति का समय आ गया। ये पुस्तक वही दस्तावेज है, क्योंकि यूहन्ना ने देखा कि कोई भी नहीं है। वो सिसकिया लेकर रोने लगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 2 से लेकर 5 तक और 7 से लेकर 9 तक। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, यूहन्ना तू मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। पद 7, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हरे के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे एक नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। अब अधिकार किसका है? मसीह यीशु आएगा और राज करेगा। शैतान का तख्ता पलट दिया जाएगा और उसे बंदी बनाकर अधोलोक में डाला जाएगा। उस युग में संसार का वो रूप हमें देखने को मिलेगा जो आदि में सृष्टि के समय था। तब हम पृथ्वी को आदन की वाटिका के सौंदर्य और महिमा में देखेंगे। उस समय पृथ्वी पर धार्मिकता का राज होगा। तब पृथ्वी पर ना तो रोग होंगे, ना अंधापन होगा, ना लंगड़ापन होगा, ना ही कोई दुर्बलता होगी। पृथ्वी पर धार्मिकता ऐसे व्याप्त होगी जैसे समुद्र में जल है। उस समय ना तो पृथ्वी पर रेगिस्तान होंगे, ना ही तूफान उठेंगे, ना वातावरण में प्रदूषण होगा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होगी। ये पृथ्वी फिर से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो जाएगी, और उस पृथ्वी को देखेंगे जिसे परमेश्वर ने बनाया था। आप इस पर प्रभु के साथ 1000 वर्ष तक रहेंगे। महिमा के दिन हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। देखिए, ये भविष्यवाणी बड़ी ध्यान देने योग्य है। जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वो उल्टा हुआ रहेगा। ना तो राजदंड होगा, ना ही राज मुकुट होगा। बाबुल से लौटने के बाद इसराइल ने किसी राजा का अभिषेक नहीं किया। जब वे 1948 में पुनः अपने देश आए, उस समय भी उन्होंने कोई राजा नहीं चुना, जबकि उनकी परंपरागत सरकार होनी थी। अतः यीशु के फिर से आने तक उनके ऊपर कोई राजा अब नहीं होगा। उनका अंतिम राजा था सिदकाया। एहेस्केल अध्याय 21 पद 28। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अमोनियों और उनकी की हुई नाम धराई के विषय में यूं कहता है, याद कीजिए कि नबुकदनेज़र के एक तीर पर अमोनियों की राजधानी का नाम लिखा था। एहेस्केल अध्याय 21 पद 28 से लेकर 30 तक। तो यूं कह, खींची हुई तलवार है, वो तलवार घात के लिए झलकाई हुई है, के नाश करें और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों के गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको मियान में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। परमेश्वर के दंड से अमोनी भी नहीं बचेंगे। परमेश्वर ने कहा, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा, अर्थात इसराइल देश में ही। एहेस्केल अध्याय 21 पद 31 और 32। और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जल जलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नाश करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में ना रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है।